धवला पुस्तक 13वी लेक्चर नंबर 8 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहूणं मुनिसुवयजिणवसहं सुवयमुनिवसः सन्तु अम्नम्युम् कम्माणुयोयमिणमो वोच्छमणे यत्थ गंथगयम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित यह धवला नामक ग्रंथ है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखा हुआ है, जो टीका है, और उसके जो रचयिता है वो है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड, और वर्गणा खंड का यह कर्मानुयोग द्वार चल रहा है। कर्म शब्द से यहाँ क्रिया समझना और उसके अलग अलग निक्षेपों की चर्चा अपनी चल रही है। तो अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 74 पर, 74। ये ध्यान के संबंध में बहुत विस्तार से बहुत अच्छी यहाँ चर्चा चल रही है। कल हमने ध्याता के अलग अलग जो गुण होते हैं उसकी भी चर्चा की थी। अब जो ये धर्म ध्यान है उस संबंधी यहाँ चर्चा चल रही है। नीचे जे 74 पेज पर नीचे से जो एक पैराग्राफ छोड़कर लाई ना शंका, वहां से पढ़ेंगे हम कि धर्म ध्यान कषाय सहित जीवों के ही होता है यह किस प्रमाण से जाना जाता है। यानी यहाँ पर इस पुस्तक में धर्म ध्यान तो 10वें गुणस्थान तक स्वीकार किया गया है और वहां तक कषाय है। तो कहते ये इसके लिए प्रमाण क्या है, तो कहते हैं असंयत समय दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, क्षपक और उपशामक अपूर्वकरण संयत, क्षपक और उपशामक अनिवृत्तिकरण संयत। ऐसा भी नहीं कि क्षपक में वो शुक्ल ध्यान शुरू होता है, ऐसा भी नहीं, वो भी 12वें में स्वीकार किया है। तथा क्षपक और उपशामक सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों के धर्मीय ध्यान की प्रवृत्ति होती है ऐसा जिनदेव का उपदेश है, इससे जाना जाता है कि धर्म ध्यान कषाय सहित जीवों के होता है। बिल्कुल क्या अकेला प्रमत्त, अरे अप्रमत्त तो भी होगा ना, हाँ ले गया वो ऊपर देखो ना प्राकृत में नीचे से दूसरी लाइन है हमारे यहाँ पर असंजद सम्माइठी संजदा संजद अपमत्त संजद अपमत्त संजद ऊपर है कि नहीं आपके उसमें अपूव संजद अनियट्ठी संजद सुहम सांप्राई खवग उव सामयेसु सबके लिए एक साथ तीन गुणस्थान के लिए क्षपक और उपशामक दोनों लिए धम्म ध्यानस पवृत्ति होदित्ति जिनोव देशादो जिनेन्द्र भगवान का ऐसा उपदेश है कहते हैं। यानी इस पर से जाना जाता है वो कषाय सहित जीवों के होता है। परंतु शुक्ल ध्यान के एक पदार्थ में स्थित रहने का काल धर्म ध्यान के अवस्थान काल से संख्यात गुणा है। क्या कहा, वो धर्म ध्यान भी है, वो देखो वो हम कहेंगे वो ध्यान की अवस्था है, परंतु उसमें छोटा छोटा अंतर्मुख कहूँ तो वो ये ध्यान का जो विषय है वो चेंज होता रहता है। क्योंकि अभी कषाय सहित जीव है तो राग की प्रवृत्ति तो अलग 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 विषयों को वो ध्यान का विषय अलग अलग चेंज होता रहता है, द्रव्य से द्रव्यांतर वगैरह। वो यह तो धर्म ध्यान लिया है, अभी पृथक तो वितर्क भी बात नहीं की है। वो पृथक तो वितर्क में भी एक भले पदार्थों को चेंज होगा, परंतु वहां उसका काल संख्यात गुणा होगा, ये कहना चाहते हैं। फिर से पढ़ें, देखो, शुक्ल ध्यान के एक पदार्थ में रहने का काल, वो तो एकत्व वितर्क तो एक ही पदार्थ में रहता है, तो एक पदार्थ में रहने का काल, ये जब कहेंगे तो पृथक्त्व वितर्क की बात है। धर्म ध्यान के अवस्थान काल से संख्यात गुणा है। धर्म ध्यान भी एक एक पदार्थ के बाद दूसरे पदार्थ अंतर का ध्यान होता है, परंतु उसमें जो रहने का काल है उससे वो पृथक्त्व वितर्क वाला जो शुक्ल ध्यान है वो एक पदार्थ में रहने का काल उसका संख्यात गुणा है, ये कहना चाहते हैं, क्योंकि उसका कारण बताते हैं। वीतराग परिणाम मणि की शिखा के समान बहुत काल के द्वारा भी चलायमान नहीं होता। देखो, ये अग्नि की शिखा जिसको कहेंगे, लौ, अभी हमने कोई दीपक जलाया तो उसकी शिखा कैसे वो चलायमान होती रहती है। मणि की शिखा यानी जो रत्न की जो ज्योति है, रत्न का जो प्रकाश है वो चलायमान नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। शंका, उपशांत, हाँ वैसा कहते, उपशांत कषाय गुणस्थान में पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान का अवस्थान अंतर्मूर्त काल ही पाया जाता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वितरागता का अभाव होने से उसका विनाश बन जाता है। किसका? वो पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान का। दसवें में आने पर फिर धर्म ध्यान शुरू होगा उनका। शंका, उपशांत कषाय के ध्यान का अर्थ से अर्थांतर में गमन देखा जाता है, यानी वहां पर भी वितरागता है तो क्या वहां पर भी वो पलटना होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि नहीं, यानी वो तो नहीं गमन देखा ऐसा नहीं कहना है, उनको हर एक प्रश्न के जवाब ने पहले में मैं नहीं कह रहे हैं, तो कहते हैं कि गमन तो होता है, क्योंकि अर्थांतर में गमन होने पर भी, यानी उनके ध्यान का जो ध्येय है अन्य पदार्थ होने पर भी, एक विचार से दूसरे विचार में गमन नहीं होने से ध्यान का विनाश नहीं होता। शंका, वितरागता के रहते हुए भी क्षीण कषाय में होने वाले एकत्व वितर्क अविचार ध्यान का विनाश देखा जाता है, क्या कहते हैं? यहाँ तो ग्यारहवें में ध्यान का विनाश नहीं होता कह रहे, और कहते यहाँ एकत्व वितर्क अविचार ध्यान का विनाश देखा जाता है। समाधान, नहीं, क्योंकि आवरण का अभाव होने से केवली जिनका उपयोग अशेष द्रव्य पर्यायों में उपयुक्त होने लगता है, क्या कहना चाहते हैं? देखो, बारहवें गुणस्थान में क्या है, एक ही बारहवें के भी शुरुआत में तो पृथक्त्व था, अंतिम अंतर्मूर्त में वो एकत्व वितर्क हो जाता है, वो पदार्थ से पदार्थांतर का संक्रमण नहीं होता है, पर ये पूछ रहे कि पन ध्यान का ही विनाश हो जाता है, कब? जब तेरहवें में जाता है तब। तो विनाश क्यों कहा? क्योंकि एक ही पदार्थ को विषय किया था, अब केवल ज्ञान होते ही क्या हुआ? अरे सभी जो द्रव्य गुण पर है सभी उनके उपयोग रूप ज्ञान में झलकने लगे। यहाँ फिर से पढ़ते इसको, समाधान देखो, आवरण का अभाव होने से केवली जिन का, नीचे केवली भगवान का उपयोग अशेष द्रव्य पर्यायों में, यानी कोई पर्याय द्रव्य पर्याय छोटे नहीं, सभी को उपयुक्त होने लगता है, उपयोग रूप ज्ञान में वो सभी द्रव्य गुण पर्याय आते हैं, इसलिए एक द्रव्य में या एक पर्याय में अवस्थान का अभाव देखकर, यानी वो एक ही द्रव्य को विषय करता है, जैसे हम कहेंगे अन्य का छोड़कर एक ही पदार्थ में उनका जो उपयोग लगता है, ये ध्यान का लक्षण यहाँ घटित नहीं होता, तो कि एक पर्याय में अवस्थान का अभाव देखकर उस ध्यान का अभाव कहा है, इसलिए वो केवल ज्ञान वो ध्यान का फल कहने में आता है। इसलिए सकषाय और अकषाय रूप स्वामी के भेद से तथा अचिरकाल और चिरकाल तक अवस्थित रहने के कारण इन दोनों ध्यानों का भेद सिद्ध है। कौन से दो ध्यान? एक धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। वो धर्म ध्यान सकषाय जीवों के है और शुक्ल ध्यान अकषाय में है। उसमें भी धर्म ध्यान का अवस्थान काल से शुक्ल ध्यान का अवस्थान काल संख्यात गुणा बड़ा है। इस तरह से दोनों में जो अंतर है उसकी बात वहां बता दी। फिर शंका, कषाय सहित तीन गुण स्थानों के काल से, कषाय सहित तीन गुण स्थान काल यानी श्रेणी के आठवा नौवा और दसवा, उन कालों से उपशांत कषाय का काल संख्यात गुणाहीन है। क्योंकि हमने देखा है तो कि सातवें से भी आठवें का काल जो संख्यात विभाग, आठवें से नौवें का संख्यात विभाग, उससे दसवें का संख्यात विभाग, तीनों से तीनों का मिलकर उससे भी ग्यारहवें का काल उससे भी हीन है। प्रश्न यही है, उसका काल संख्यात गुणाहीन है, इसलिए वीतराग ध्यान का अवस्थान काल संख्यात गुणा है यह बात नहीं बनती। क्या कहना चाहते हैं? नीचे के उन्होंने गुणस्थान के काल से कंपैरिजन की। पहले क्या बताया था? धर्म ध्यान में जो एक पदार्थ में जो अवस्थान होता है उपयोग का, उस काल से उपशांत कषाय वाले जो ध्यान का उसका जो काल है, एक पदार्थ में अवस्थान रहने का काल संख्यात गुणा है। अब इसने शंका करने क्या पूछा? अरे उस गुणस्थानों से उसका काल छोटा है तो ये अवस्थान का काल संख्यात गुणा कैसे होगा? पर वो ये भूल रहा है कि वो गुणस्थानों का काल बहुत बड़ा है परंतु उसमें पदार्थों से पदार्थांतर होने का काल छोटा है, यानी वो कितने बार उसको चेंज होता होगा, है ना? मेरे ख्याल से उसको कुछ ऐसा नाम है, ध्यान संतति ऐसा ऐसा कुछ, चार नाम हमने देखे थे प्रवचन सार में, कहाँ देखे थे? एक ध्यान संतति शब्द आया है और एक दो तीन ऐसे ही, ठीक है यहाँ आते तो देखेंगे। देखो फिर से, तो प्रश्न समझ में है ना, उसका समाधान नहीं, क्योंकि एक पदार्थ में कितने काल तक अवस्थान होता है इस बात को देखकर उक्त बात कही है। यानी भले वो गुणस्थानों का काल बड़ा है परंतु उसमें एक पदार्थ में कितने काल तक टिकता है उसकी बात है, यानी वो कितने बार चेंज होता होगा, बहुत ज्यादा बार। तो एक पदार्थ में रहने का काल अल्प है, भले वो अंतर्मूर्त भी होगा, परंतु वो ग्यारहवें में जो एक पदार्थ में रहने का काल, वो उससे बड़ा है। यानी वो इतनी बार चेंज नहीं होगा ना, उनका अंतर्मूर्त छोटा है परंतु वो इतने बार वो पलटना ज्यादा नहीं, यहाँ पलटना बहुत बार होगा। इस विषय में गाथाएं 76 पृष्ठ पर देखते अभी। इक्कावन नंबर की गाथा ऊपर पढ़ते हैं। अंतो मुहूर्तमेतम चिंतावत्थान मेघवत्थुम्मी छदुमत्थानम झाणम जोगणिरोहो जिनाणम तु। एक वस्तु में अंतर्मूर्त काल तक चिंता का अवस्थान होना छद्मस्थों का ध्यान है। वो चिंता यानी हम उपयोग जो है ज्ञान का, और योग निरोध जिन भगवान का ध्यान है। देखो भगवान को एक वस्तु में चित्त लगाना कहो, चिंता का निरोध कहो, क्या है तो हमारा उपयोग एक वस्तु में केंद्रित हुआ है उसको ध्यान कहा। किसके लिए? छद्मस्थ के लिए। पर केवली भगवान को भी तो ध्यान कहने में आता है। कौन से ध्यान है केवली के अश्विन भाई?
शुक्ल ध्यान।
कौन से शुक्ल ध्यान?
अविचार वाला।
अरे
देख सॉरी सॉरी, वो तो बारहवें के अंत में।
पहले कौन सा है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति, यानी जो सूक्ष्म किया जाता है ना योग, और फिर योग का निरोध होता है, तो वहां भी उनको ध्यान कहा है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये दो ध्यान उनके बताए हैं। उसका कारण क्या है? तो योग का निरोध ये केवली के लिए ध्यान है। फिर से पढ़ते इसको देखो। एक वस्तु में अंतर मुहूर्त काल तक चिंता का अवस्थान होना छद्मस्थों का ध्यान है। अभी ये लक्षण तो हम केवली में घटित नहीं कर सकते। एक वस्तु में क्या, वो त्रिकालवर्ती समस्त वस्तुएं उनके ज्ञान में झलक रही, तो एक पदार्थ में अवस्थान ऐसा कैसा कहेंगे, तो वो वाला ध्यान तो है ही नहीं उनके, तो उनके कौन सा ध्यान है? तो योग निरोध ये जिन भगवान का ध्यान है। 52 नंबर पर, अंतो मुहूर्त परदो चिंता झाणंतरम वहोज्जाही सुचिरम पिहोज बहुत संकमे झाण संतानो। ये ध्यान संतान शब्द आया, देखो यहाँ पर ऐसे और भी शब्द है वहां पर। अंतर्मूर्त के बाद चिंतांतर, ये अंतर क्या होता है? जो हमें देशांतर किया यानी अन्य देश को जाना, स्थानांतर किया, हमने भाषांतर किया, अनुवाद को क्या कहते हैं? भाषांतर किया। ये क्या है सब? एक से दूसरे में ऐसे चिंतांतर यानी एक वस्तु में चित्त को रोका था वो अन्य चित्त में, अन्य वस्तु में। कहते अंतर्मूर्त के बाद चिंतांतर या ध्यानांतर होता है, अन्य चीज का ध्यान चल रहा है, पर ध्यान ऐसे चल रहा है, पर उसका ध्यान का जो ध्येय, जो नव पदार्थ, जो आगम की कोई भी, जो हम कहें ना श्रुत का शब्द हो या कोई भी एक बात पर ध्यान चलता है तो वो चेंज हो जाता है, या अंतर्मूर्त के बाद होता है, या चिरकाल तक बहुत पदार्थों का संक्रम होने पर भी एक ही ध्यान संतान होती है। क्या क्या पदार्थ बहुत संक्रमित हुए उसके विषय, फिर वो ध्यान संतति एक सदृश चल रही है, यानी बीच में वो तो शुद्धोपयोग में शुभोपयोग में आता है वो बात नहीं है, ध्यान ऐसा चल रहा है उसको ध्यान संतति कहा, ध्यान संतान होती है ना, एक ही ध्यान संतान होती है। अभी आगे अच्छा गाथा बाद में पढ़ेंगे। इस धर्म ध्यान में पीत पद्म और शुक्ल ये तीन ही लेशाएं होती है, क्योंकि हमने देखा है धर्म ध्यान में ये शुभ लेशाएं हैं, क्योंकि कषायों के मंद मंदतर और मंदतम होने पर धर्म ध्यान की प्राप्ति संभव है। इस विषय में गाथा, त्रेपन नंबर पर, कौंती क्या है उसमें, कर्म विशुद्धा हुए का कर्म
चाहिए ना,
कोई शब्द कुछ छूट, एक मिनट अर्थ से हम और ऊपर चलते हैं। चौवन कौन से, त्रेपन है ना,
53 नंबर,
क्रम से विशुद्धि को प्राप्त हुई, क्रम विशुद्धा हो, ये कर्मा जैसा दिखता है
वो क्रम चाहिए ना,
हाँ क्रम, क्रम क्रम शब्द होता है कि कम होता है,
क्रम होता है
नहीं, कम कम तो हमारे में भी लिखा है, पर वो विशुद्धि का वो शब्द वो उसकी वेलांटी बराबर नहीं दिखती थी, कम लिखेंगे चलेगा क्योंकि कम एक क्रम के लिए कम शायद प्राकृत में होता होगा, क्रम शब्द यहाँ अन्यत्र कहीं नहीं आया है, जब आएगा तभी देखेंगे हम, यानी वो क्रम के अर्थ में है।
कि 13वें गुणस्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति और दूसरा दान का नाम क्या बताया?
वो 13वें में नहीं होता है, वो 14वें में होता है,
विपरीत
विपरत क्रिया निवृत्ति निवर्ती, व्युपरत क्रिया निवर्ती। देखो अभी हम पढ़ते यहाँ पर 53 नंबर का जो गाथा उसकी, उसको कहने पौंतिकम विशुद्धाओ लेसाओ पीय पौम उक्काओ धम्मच्छाणो वगयस त्युव मंदादि भेयाओ। धर्म ध्यान को प्राप्त हुए जीव के तीव्र मंद आदि भेदों को लिए हुए क्रम से विशुद्धि को प्राप्त हुई पीत पद्म और शुक्ल लेशाएं होती है, यानी जब वो धर्म ध्यान शुरू होता है तो वो जो कोई लेशाएं हैं वो अभी मंद से, यानी वो तो हाँ तीव्र मंद आदि भेदों के लिए हुए वो विशुद्धि को प्राप्त होती। अधिक विशुद्धि तक चली जाती। शंका, यह धर्म ध्यान में परिणमता है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, जिन और साधु के गुणों की प्रशंसा करना, विनय करना और दान संपत्ति से जाना जाता है, इस विषय में गाथाएं हैं। यानी वो धर्म ध्यान का चिन्ह बता रहे। आगम उवदेशाण निसग्गदोजं जिनप्पणीयाणं भावाणं सद्दहनं धम्मच्छाण सतल्लिंगम्। आगम उपदेश और जिनाज्ञा के अनुसार निसर्ग से जो जिन भगवान के द्वारा कहे गए पदार्थों का श्रद्धान होता है वह धर्म ध्यान का लिंग है। यानी सम्यक दृष्टि के ही यह धर्म ध्यान होगा, क्योंकि उसके आगम उपदेश और जिनाज्ञा के अनुसार जो है पदार्थों का श्रद्धान होता है। पहले बताया था ना, सम्यक दृष्टि के ही धर्म ध्यान होता है, क्योंकि ये भगवान का आप्त आगम और पदार्थों का श्रद्धान पाया जाता है। 55, जिन साहु गुण कीर्तन प्रशंसना विनय दान संपन्ना सुदशील संजमरदा धम्मच्छाणे मुने ओवा। जिन और साधु के गुणों का कीर्तन करना, प्रशंसा करना, विनय करना, दान संपन्नता, श्रुत शील और संयम में रत होना, ये सब माते धर्म ध्यान में होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब शंकाकार पूछते 77 पेज पर, इस धर्म ध्यान का क्या फल है? समाधान, अक्षपक जीवों को, यानी जो श्रेणी में नहीं है उसकी बात है, यानी क्षपक श्रेणी में नहीं, क्योंकि क्षपक श्रेणी तो अरहंत बन के सिद्ध हो जाएंगे। अक्षपक जीवों को देव पर्याय संबंधी विपुल सुख मिलना उसका फल है। वो सुख कुछ अतीन्द्रिय सुख नहीं है, फिर भी वहाँ के योग्य जो अतिमंद कषाय के कारण वहाँ जितना बंद हुआ है शुभ प्रकृतियों का, तो वो तो भोगना पड़ेगा ना, फिर भी उसको विपुल सुख मिलता है ऐसा कहेंगे, ये उसका फल है। और गुण श्रेणी में कर्मों की निर्जरा होना भी उसका फल है। यानी उसका फल क्या है, ध्यान का फल क्या है, तो गुणश्रेणी रूप से निर्जरा होना, अधिक मात्रा में निर्जरा होना। आपका ऐसा प्रश्न है, पाप कर्मों की निर्जरा होती है तो पुण्य क्यों भुगतना पड़ता है? देखो, जो निर्जरा हो रही है पुण्य भी की और पाप की भी, कौन से? कि जो बहुत पहले बंधे हुए, असंख्यात भवों पहले बंधे हुए भी कर्म पड़े हैं सत्ता में, भले पुण्य रूप पाप रूप है, जिनकी स्थिति पूरी हुई है और जो अभी ऊपर के निषेकों में पड़े वो अधिक मात्रा में खिर जाते हैं, पर अभी जो नए बंधे उसको फल भुगतना पड़ा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि इतनी गुण श्रेणी होने पर भी असंख्यात गुणा कर्म सत्ता में पड़ा है। 14वें के अंत समय में एक निषेक में भी असंख्यात गुणा द्रव्य है, तो कितना अधिक द्रव्य होगा ये कहना चाहते। तो जो अभी नया बंध भी हो रहा है तो उसका तो फल भुगतना पड़ेगा। तथा क्षपक जीवों के, तो क्षपकों में क्या होता है, असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्म प्रदेशों की निर्जरा होना और शुभ कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग का होना उसका फल है। यानी वो भी जो हम कहते हैं वहां पर यशस कीर्ति है, साता वेदनी, अत्यंत तो उत्कृष्ट अनुभाग रूप से वो जो है वो परिणमित होता है। हम तो फल चाहते हैं ना, इंद्रियों के सुख का फल चाहते हैं, उसकी बात हम पहले सोचते हैं, वो तो है उसके उदय में आकर खिर रहे हैं। अतएव जो धर्म से अनपेत है वह धर्म ध्यान है, यह बात सिद्ध होती। अनपेत का अर्थ क्या है? धर्मात अनपेतम, यानी युक्त। अच्छा, धर्म से युक्त, इस विषय में गाथाएं। 56 नंबर, होंति सुहासव संवर निज राम रसुहाइम विउलाइम झाणवरसफलाइम सुहाणुबंदीणि धम्मस्स। उपलिखन होती सुह आसव, शुभ आश्रव होता है, उत्कृष्ट धर्म ध्यान के शुभ आश्रव संवर, निर्जरा और देवों का सुख, ये शुभानुबंधी विपुल फल होते हैं। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है, ये उनका पापानुबंधी नहीं है, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि को जो पुण्य का फल मिलता है वो पापानुबंधी पुण्य, जो लास्ट में जो पुण्य शब्द है वो पुण्य का उदय बताता है, और वो उस पुण्य के उदय में क्या कर रहा है, नया पाप कर रहा है। अभी हम जो देख रहे हैं, अभी जिनके बहुत प्रसिद्धि मिल रहे, बहुत पैसा है, वो क्या है, उनके तो पूर्व पुण्य का उदय है, पर उसके उदय में नया पाप कर रहे हैं, उसको कहेंगे पापानुबंधी पुण्य। अब इनको कैसे बताया, शुभानुबंधी विपुल फल होते, यानी उसके उदय, क्योंकि ये तो समय दृष्टि है और ये धर्म ध्यान में लीन है, अभी तो क्षपक है ही नहीं है, तो जो पुण्य बंधेगा यहाँ पर, और अनेक कर्मों का संवर भी है ना, जिस गुणस्थान में पहुंचे हैं उनके जो बंध की विच्छित्ति हुई है उतना तो संवर चल ही रहा है, और जो कुछ वहाँ जो कुछ कर्म बंध रहे वो शुभ आश्रव वाले बंध रहे। निर्जरा तो गुणश्रेणी निर्जरा तो होती ही होती है, तो ये और इसका फल क्या है, शुभानुबंधी विपुल फल होते हैं। 57 नंबर, जवा घन संघाया खनेन पवनाहया विलिच्छन्ति झान पवनो वहया तह कम्म घना विलिच्छन्ति। अच्छा उदाहरण दिया, क्या कहते थे, अथवा जैसे मेघ पटल पवन से ताड़ित होकर, यानी जो हम मेघ आए हैं और हवा बहती है, क्षण मात्र में विलीन हो जाते हैं। अभी हमने देखा देवलाली में इतने मेघ आए, हमें लगा अभी आज तो बहुत तूफान आने वाला है, परंतु देखते देखते वो चले गए, निकल गए। तो क्या कहते हैं, ताड़ित होते पवन से, हाँ, हवा के कारण वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते, क्षण मात्र में विलीन हो जाते। वैसे ही ध्यान रूपी पवन से उपहत होकर कर्म मेघ भी विलीन हो जाते हैं। उपहत होने उसकी मार बढ़ दी है, जैसा कहेंगे ना। इस प्रकार धर्म ध्यान का कथन समाप्त हुआ, अब शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। बहुत अच्छा यहाँ वर्णन आया है ये ध्यान का। यथा अभी कथन करने के पहले प्रश्न पूछ रहे हैं, इसे शुक्लपना किस कारण से प्राप्त है, उसको शुक्ल ध्यान क्यों कहते हैं। समाधान बताए ना, पढ़ा था, तो शुक्लपना क्यों कहते हैं, उसका समाधान, कषाय मल का अभाव होने से। उन्होंने सकषाय और अकषाय से दो भेद किए थे, और जहां तक कषाय है सूक्ष्म सांप्राय तक उसको धर्म ध्यान कहा था, और उपशांत कषाय और क्षीण कषाय उनको तो शुक्ल ध्यान कहा था। वह चार प्रकार का है, देखो यहाँ नाम है, एक है पृथक्त्व वितर्क विचार, इसका अर्थ बताएंगे, दूसरा है एकत्व वितर्क अविचार, वो वी ह्रस्व नहीं है, वी दीर्घ है, विचार यानी संक्रमण पलटना। तीसरा है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, वो दोनों को क्रिया और अप्रतिपाती जोड़कर क्रिया प्रतिपाती कहने का भी प्रघात है, परंतु वो शब्द सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती है। और चौथा है समुच्छन्न क्रिया अप्रतिपाती या अनिवृत्ति, ऐसा भी शब्द आता है, समुच्छिन्न क्रिया, उसको विपरत क्रिया ऐसा भी आता है, विपरत या समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती या अनिवृत्ति। उनमें से प्रथम शुक्ल ध्यान का लक्षण कहते हैं, जिसको हम पृथक्त्व वितर्क विचार है उसका भी अर्थ कहेंगे, उसका लक्षण कहेंगे। पृथक्त्व का अर्थ भेद है, पृथक्तम के अनेक है, तो वो भेद वितर्क अर्थ द्वादशांग श्रुत है। वितर्क ये तर्क वितर्क करना वो नहीं है, द्वादशांग श्रुत जो आगम है और विचार से मतलब, ये पूरा द्वादशांग श्रुत में उसमें से कोई भी उसका विषय हो सकता है। और विचारण क्या पलटना है, विचार से मतलब अर्थ, अर्थ का अर्थ होते द्रव्य, व्यंजन, व्यंजन का अर्थ होते शब्द जो श्रुत का शब्द जो है, और योग की संक्रांति है, संक्रांति ने पलटना, जिसे मनोयोग से, वचन योग से, काय योग से वो बारंबार पलटना होता है क्योंकि वो योग का काल भी बहुत ही अल्प है। अर्थ यानी द्रव्य, व्यंजन यानी शब्द। और ऐसे अक्षर वर्ण के लिए भी व्यंजन शब्द आता है, कैसे हमें स्वर और व्यंजन, पर व्यंजन शब्द के लिए भी शब्द, यानी शब्द के लिए भी व्यंजन ये वापरा जाता है, यानी अर्थ से अर्थांतर, व्यंजन से व्यंजनांतर, योग से योगांतर होता रहता है। पृथक्त्व अर्थात भेद रूप से, वितर्क अर्थात श्रुत का, विचार अर्थात संक्रांति, यानी भेद रूप से श्रुत का जो संक्रांति है जिस ध्यान में होती है वह पृथक्त्व वितर्क विचार नामक ध्यान है। इस विषय में गाथाएं 78 नंबर के पृष्ठ पर। दौवाई मणे गायम तीहि विजोगे हिजेन ध्यायन्ति वसंत मोहनिच्छा तेन पुदत्तम तितम भणिदम। यतः उपशांत मोह जीव अनेक द्रव्यों का तीनों ही योगों के आलंबन से ध्यान करते हैं, इसलिए उसे पृथक्त्व ऐसा कहा है। ये पृथक्त्व का अर्थ बताया, भेद अनेक द्रव्य अलग अलग। अब उसको वितर का अर्थ बताएंगे 59 नंबर। जम्मा सुदम विदक्कम जम्मा पूवगय अथ कुशलोय झायति झाणम एदम सविदक्कम तेन तम झाणम। यतः वितर्क का अर्थ श्रुत है, पहले बता चुके थे और यतः पूर्वगत अर्थ में कुशल साधु ही क्या कहना चाहते, ये पहले ही बता चुके थे कि जो ध्यान कौन से, ये शुक्ल ध्यान की बात है ना, 11वें 12वें की बात है यहाँ पर, या तो 11वें की बात है क्योंकि पृथक वितर की बात उन्होंने प्रथम उठाई है। तो कौन से साधु इस श्रेणी के श्रेणी चढ़ते हैं, तो कहते कि पूर्वविद। पूर्वविद में 14वां पूर्वी या 10वां पूर्वी या 9वां पूर्वी तो हो गई, तो यही श्रेणी चढ़ते है। यहाँ क्या लिखा है देखो, वितर का अर्थ श्रुत, और क्योंकि पूर्वगत अर्थ में कुशल साधु ही, यानी जिनको पूर्वगतों का ध्यान ज्ञान है, ऐसे साधु ही इस ध्यान को ध्याते हैं, इसलिए उस ध्यान को सवितर्क कहा है। या अकेला वितर्क कहो, सवितर्क कहो, एक ही बात है। अब कहते 60 नंबर। अत्थान वंजनानम ये जोगान ये संकमोह विचारो तस्सत भावेण तगम सुत्ते उत्तम सविचारम। ये सुत्ते करना, सुत्त नहीं। अत्थान वंजनानय जोगान ये संकमोह विचारो, यानी विचार यानी संक्रमण, किसका, अर्थ का, व्यंजन का और योगों का। नीचे देख दो, अर्थ व्यंजन और योगों का संक्रम विचार है, जो ऐसे संक्रम से युक्त होता है उसे सूत्र में सविचार कहा है। पृथक्त्व शब्द का बता दिया अर्थ, फिर वितर्क का बताया और विचार का बताया, इसका भावार्थ कहते हैं। स्वयं वीरसेन स्वामी ने यह भावार्थ लिखा है ऊपर है ना, दस भावत्थो उच्छदे 14, 10 और 9 पूर्वों का धारी, प्रशस्त तीन सहनन वाला। कौन से तीन सहनन हो गए प्रेरणा में? हाँ, नाम वज्रषभ नाराज, वज्र नाराज
नाराज
तो तीन प्रशस्त तीन सहने वाला कषाय कलंक से पार को प्राप्त हुआ, जिसको शांत कषाय कहेंगे, और तीन योगों में से किसी एक योग में विद्यमान ऐसा उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ जीव, कौन जीव है उसकी पहले बात की। एक तो पूर्व का ज्ञाता है, उत्कृष्ट सहनन वाला है, अकषाय भाव वाला है, और तीन योगों में से एक है, और उन योगों का भी पलटना होता है, यानी वो ग्यारहवें का काल इतना अल्प है तो योगों का काल उससे भी छोटा है, तो कितना अल्प काल में योग पलटता है। ऐसा जो उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ जीव बहुत नय रूपी वन में लीन हुए, ऐसे एक द्रव्य, नय रूपी वन में लीन यानी एक ही द्रव्य को जानते हैं, परंतु वो जुदे जुदे नयों से वो अलग अलग उसका जानना हो जाता है। एक द्रव्य या गुण पर्याय को, यानी एक द्रव्य या गुण पर्याय को श्रुत रूपी रवि किरण से प्रकाश के बल से ध्याता है, यानी द्रव्य गुण पर्याय जो है वो अनेक नयों से उसका जो आगम में उसका कथन आता है तो उसी को वो श्रुत रूपी रवि किरण के प्रकाश के बल से ध्याता है, उसका ज्ञाता है, और इस कारण उस किसी एक पर उसका ध्यान केंद्रित है। इस प्रकार उसी पदार्थ को अंतर्मूर्त काल तक ध्याता है, यानी उस पर उनका जो उपयोग केंद्रित है। फिर क्या होता है, इसके बाद अर्थांतर पर नियम से संक्रमित होता है, वो नियम से अंतर्मूर्त के बाद वो जो अन्य अर्थ जो अन्य द्रव्य उनके ध्यान का विषय होता है। नियम से संक्रमित अथवा उसी अर्थ के गुण या पर्याय पर संक्रमित होता है। पहले मान लेते ना द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य को लिया था ध्यान का ध्येय, अब उसके किसी एक गुण पर पर्याय पर उसमें संक्रमित होता है, और पूर्व योग से बराबर करो स्यात योगांतर पर संक्रमित होता है, यानी अन्य योग पर संक्रमण होता है। एक मनोयोग या वचन योग का कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं कि ग्यारहवें वाला यही योग है, ऐसा भी नहीं, और एक ही योग में कोई पूरा ग्यारहवां गुणस्थान नहीं होता है, अनेक बार उसमें पलटन होती है। इस तरह एक अर्थ अर्थांतर गुण गुणांतर पर्याय और पर्याय पर्यायांतर को नीचे ऊपर स्थापित करके क्या कहा, अभी उसके भंग बता रहे। फिर तीन योगों को एक पंक्ति में स्थापित करके द्विसंयोग और त्रिसंयोग की अपेक्षा यहां पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान के 42 भंग उत्पन्न करना चाहिए। नीचे तो तीन योग लिए हैं, एट ए टाइम तो एक ही योग होगा, है ना? एक एक योग में एक ऊपर का एक एक लेंगे
छह हो जाएगी
एक योग में, छह सैत्रिक 18 तो ऐसे हो सकते हैं, परंतु बाकी उनके द्विसंयोगी लिए उन्होंने, द्विसंयोग और त्रिसंयोग की अपेक्षा।
ये कहीं द्विसंयोग किससे होगा,
अर्थ और गुण को लेना, अर्थ और अन्य गुण को लेना, गुणांतर को लेना, इस तरह से उसमें हो जाएगी द्विसंयोग में लेना, और तीन में अर्थ के गुण और उसकी पर्याय। अठारह निकल गए, नहीं कितने रहे, आठ चार बारह चले एक 24 रहेगी ना,
24 रह गए।
हाँ, यानी छह में द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी की करना, उसमें अकेले देखो थोड़ा करके देखते हैं, मैंने भी नहीं किया हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे एक ही अर्थ लिया है, एक ही द्रव्य लिया है, कि द्रव्य का भी पलटना होता है।
होता है ना द्रव्यों का पार्टी किधर गई मान लेते हैं यहाँ तो ये छह हो गए ना ऊपर के छह हुए छह में सिंगल तो छह हो जाते द्विसंयोगी कितने होते हैं
छह का
पांच का एक बार संकलन
हाँ।
पंद्रह होंगे और त्रिसंयोगी
चार का
दो बार संकलन
चार पांच छह एक दो तीन
बीस ये ज्यादा हो जाएगी त्रिसंयोगी में कैसे लेना है द्रव्यों में ही कुछ लेना पड़ेगा अर्थ अर्थांतर गुण गुणांतर पर्याय पर्यायांतर को या इस तरह से ले सकते हैं छह द्रव्य है छह में पलटना होगा उसके गुण और पर्याय के साथ छह द्रव्यों का एक गुण फिर गुण से गुणांतर इस तरह उसको ले लान द्विसंयोगी छह द्रव्य एक बाजू लेना
गुण से गुणांतर और पर्याय से पर्याय
हाँ गुण गुणांतर पर्याय पर्यायांतर एक द्रव्य में केवल द्रव्य को विषय किया द्रव्य और गुण का विषय किया द्रव्य गुण पर्याय को विषय किया इस तरह से उसके भंग उन्होंने लगाए हाँ क्योंकि 42 लिखा है ना तो उसमें एक एक योग में तीनों के तीन तीन चौक 14 भंग कर दिए उन्होंने एक एक योग में
ये आगे बताया छह द्रव्य और नौ पदार्थ विषय पुस्तक का वितर्क विचार
वो तो अलग बात है इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक शुक्ल लेशा वाला उपशांत कषाय जीव छह द्रव्य और नौ पदार्थ विषयक पृथक वितर्क विचार ध्यान को क्योंकि ये छह द्रव्य और नौ पदार्थों के क्योंकि पूरा आगम ही उसका विषय है तो आगम में क्या है छह द्रव्य है और नौ पदार्थ है उस विचार ध्यान को अंतर्मूर्त काल तक ध्याता है अर्थ से अर्थांतर का संक्रम होने पर भी ध्यान का विनाश नहीं होता क्योंकि इससे चिंतांतर में गमन नहीं होता देखो यानी वो तो उसका विषय चेंज हो गया है परंतु वो जो एकाग्र चिंता वाली बात है वो एक चिंता से चिंतांतर नहीं हुआ है ये कहना चाहते
तो यहाँ एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ को जानने लगता है तो भी उसका चिंतवन में कोई फर्क नहीं हुआ ऐसे बता
चिंतवन में मत कहना चिंतवन अनुप्रेक्षा को भी कहते हैं यहाँ तो कहते एकाग्र चिंता जो बताए वो मन जो उपयोग को एकाग्र किया है वो उपयोग का पलटना नहीं हो रहा है द्रव्य से द्रव्य का द्रव्यांतर वो योग का पलटना वगैरह हो रहा है देखो अर्थ से अर्थांतर का संक्रम होने पर भी ध्यान का विनाश नहीं होता क्योंकि इससे क्योंकि ये कौन सी शुक्ल ध्यान की बात अभी चल रही है पहले तो धर्म ध्यान में तो चिंतांतर भी कहा था फिर भी उस ध्यान की संतति बताई थी वहां पर यहाँ वो ध्यान कंटिन्यूअस है इस प्रकार इस ध्यान के फलस्वरूप संवर निर्जरा और अमर सुख प्राप्त होता है क्योंकि इससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती
मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती
पृथक्त्व वितर्क लिया है अभी एकत्व नहीं लिया है देखो पहले धर्म ध्यान में क्या लिया था वो स्वर्ग का सुख भी कर लिया था यहाँ क्या लिया है वहाँ शुभ आश्रव भी रखा था याद है पहला शब्द था शुभ आश्रव फिर संवर निर्जरा और देवगति का सुख लिया था यहाँ क्या डिफरेंस है संवर लिया शुभाश्रव नहीं लिया क्यों नहीं लिया शुभाश्रव मनीषा
ये तो वितराग है ना
हाँ कौन 11वां गुणस्थान है तो ग्यारहवा गुणस्थान में क्या हो रहा है, पूर्ण वितरागी है ना, इसलिए शुभ आश्रय को नहीं लिया। क्योंकि पहले देखो दसवें तक तो आठ कर्म बनते थे, यशस कीर्ति वो उच्च गोत्र वो सब बन रहा था, अब यहाँ तो वो तो आया और चला गया। तो कहते इस ध्यान के फलस्वरूप संवर निर्जर और अमर सुख प्राप्त होता है। अमर सुख यानी वो देव सुख भी लिया है अमर सुख में, क्योंकि इससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती।
ये अमर सुख में देव सुख भी लेना है ना,
अमर का अर्थ देव ही है ना। भक्तामर किसको कहते हैं, भक्तांबर शब्द नहीं है वो, भक्तामर शब्द है। किसको कहा भक्तामर नहीं मालूम, आपको मालूम है भक्तामर प्रणत मौलिस वो क्या, उसका अर्थ क्या होता है? मणि प्रभाव सब याद तो कर दिया फटाफट। अरे भक्त अमर यानी देव भक्त जो है वो नमते हैं तो उनके जो मुकुट के मणि की प्रभाव उनके नखों में दिखती है, वो ये ऐसा उसका वर्णन है। भक्त अमर ने भक्त देव, अमर का अर्थ होते देव, बहुत लंबी आयु है ना उनकी पल्लियों की और सागरों की, इसलिए उसको अमर कहते हैं। अमर यानी बिना मृत्यु के, वो तो मरते तो है ही है, फिर भी देवों को अमर कहने की प्रथा है। तो कहते क्या इससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, क्यों? क्योंकि पृथक्व वितर्क वाला ध्यान है। इस प्रकार पृथक्व वितर्क विचार ध्यान का कथन समाप्त हुआ। अब द्वितीय शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। द्वितीय शुक्ल ध्यान का नाम क्या था? एकत्व वितर्क अविचार। एक का भाव एकत्व है, वितर्क द्वादशांग को कहते हैं, और अविचार का अर्थ असंक्रांति है, नहीं पलटना। अभेद रूप से वितर्क संबंधी यानी श्रुत संबंधी द्वादशांग संबंधी अर्थ व्यंजन और योगों का अविचार अर्थात असंक्रांति जिस ध्यान में होती है वह एकत्व वितर्क अविचार ध्यान है, इस विषय में गाथा है। 61 नंबर ऊपर। जेणे गमेव दौवम जोगेण एकेण अन्नदरेण खीण कसाओझायै तेने यत्तम तगम भणिदम। यतः क्षीण कषाय जीव एक ही द्रव्य का किसी एक योग के द्वारा ध्यान करता है, इसलिए उस ध्यान को एकत्व कहा है। 62 नंबर। जम्मा सुदम विदक्कम जम्मा पूवगय अथ कुसलोय झाय दिझाणम एदम सविदक्कम तेन तझाणम। यतः वितर्का अर्थ वितर्क का अर्थ श्रुत है, इसलिए और जिसलिए ने क्योंकि पूर्वगत अर्थ में कुशल साधु, हमने देखा था कि ये कौन श्रेणी चढ़ता है, तो पूर्वविद, 14 पूर्वी 10 पूर्वी 9 पूर्वी, पूर्वगत अर्थ में कुशल साधु इस ध्यान को ध्याता है, इसलिए इस ध्यान को सवितर्क कहा है। वितर्क कहो या सवितर्क एक ही बात है। अब कहते आगे का उसकी गाथा ऊपर। अत्थान वंजनाणय जोगाणय संकमोहु विचारो तस्स भावेण तगम झाणव विचारमिति उत्तम। अर्थ व्यंजन और योगों के संक्रम का नाम विचार है, यतः उस विचार के अभाव से यह ध्यान होता है, इसलिए इसे अविचार कहा है। इसका आशय यह है जिसके शुक्ल लेशा है, जो निसर्ग से बलशाली है, निसर्ग से शूर है, वज्र ऋषभ वज्र नाराज सहनन का धारी है। वहां तो तीन उत्तम सहनन लिए थे ग्यारहवे वाले के लिए, और यहाँ एक ही, दो नहीं एक, वज्र ऋषभ नाराज है वो वज्र का वृषभ वज्र का नाराज दोनों एक ही सहनन को बता रहे हैं। वज्र वृषभ वज्र नाराज का अर्थ होता है वज्र वृषभ नाराज सहनन का धारी है, किसी एक सहनन वाला संस्थान वाला है। कौन सा संस्थान होता है? छो होगा। तीर्थंकरों के तो सहनन जो संस्थान जो है समचतुरस्य तीर्थंकर के जो, परंतु सामान्य जो अरिहंत है वो छह संस्थानों में से कोई भी संस्थान होगा। चौदह पूर्वधारी है, दस पूर्वधारी है या नौ पूर्वधारी है? क्षायिक सम्यक दृष्टि, ये तो मुख्य बात है ना। वो तो क्षायिक सम्यक तो उसने तो श्रेणी चढ़ने के पूर्व ही प्राप्त किया, तभी तो श्रेणी चढ़ेगा। और जिसने समस्त कषाय वर्ग का क्षय कर दिया है, कषाय वर्ग यानी अभी तो सब घाती तो चले गए उसके, सॉरी कषाय वर्ग घाती नहीं मोनिय, कषाय वर्ग है ना अभी बारहवीं की बात चल रही है, यानी मोहनी का संपूर्ण क्षय हो गया है। ग्यारहवें ने उपशांत किया था, क्षय कर दिया। ऐसा क्षीण कषाय जीव नौ पदार्थों में से किसी एक पदार्थ का द्रव्य गुण और पर्याय के भेद से ध्यान करता है। इस प्रकार किसी एक योग और एक शब्द के आलंबन से, यहाँ लिखा है ना देखो, ये शब्द शब्द है ना, व्यंजन के लिए शब्द लिखा है, पहले भी बताया ना पदार्थ, पदार्थ के लिए शब्द क्या आया था? अर्थ। फिर व्यंजन यानी शब्द और योग, तीनों में जो बातें हैं पलटना नहीं होता है। इस प्रकार किसी एक योग और एक शब्द के आलंबन से वहां एक द्रव्य गुण या पर्याय में मेरु पर्वत के समान निश्चल भाव से अवस्थित चित्त वाले, अब उसी पर उनका बिल्कुल डगमगाता नहीं, वहां से उपयोग हटता नहीं है, एक ही को विषय कर दिया। असंख्यात गुणश्रेणी क्रम से कर्म स्कंदों को गलाने वाले, जरा ऊपर क्रम के लिए क्या शब्द आया देख, प्राकृत में अनंत गुण कम खंदे गालेंत स असंख्य जगुण श्रेणी, इस गुण श्रेणी से ही लिखा है, क्रम नहीं लिखा। कर्म स्कंदों को गलाने वाले यानी वहां असंख्यात गुण श्रेणी तो चलती रहती है, अनंत गुणहीन श्रेणी क्रम से कर्मों के अनुभाग को शोषित करने वाले, यानी कर्मों का जो अनुभाग है, कौन से कर्मों का? अप्रशस्त कर्मों का, तो उसका अनुभाग प्रति समय अनंत गुणहीन हो रहा है, यानी लिखा ना अनंत गुणहीन श्रेणी क्रम से कर्मों के अनुभाग को शोषित करने वाले और कर्मों की स्थितियों को एक योग तथा एक शब्द के आलंबन से प्राप्त हुए ध्यान के बल से घात करने वाले उस जीव का अंतर्मूर्त काल जाता है। क्या कहना चाहते हैं इसका अर्थ क्या है अश्विन भाई, आप बताएंगे?
एक ही योग में
कर्म स्थितियों को एक योग तो मालूम है ना, मनोयोग होगा, वचन योग का योग होगा, तो कहते इसका अर्थ बताना आप, कर्मों की स्थितियों को एक योग तथा एक शब्द के आलंबन से प्राप्त हुए ध्यान के बल से घात करने वाले उस जीव का अंतर्मूर्त काल जाता है।
अनुसमय
अपवर्तन स्थिति घटती है, अनुसमय अपवर्तन अनुभव को बताता है, वो तो प्रति समय अनुभव तो अनंत गुणाहीन होता है, इसको कहेंगे स्थिति कांड घात चल रहे वहां पर, स्थितियों को घात करता है ना, स्थितियों का घात किससे? ऐसे समय दृष्टि भी प्रति समय एक एक निषेक तो जा ही रहा है, उसका सत्व तो एक एक समय से कम होता है, चौथे वाले को भी होता है, उसकी बात नहीं है वहां, तो श्रेणी में जो है वो तो स्थिति कांड घात चल रहे है वहां पर।
तो ये अंतर्मुख में भी संख्या स्थिति कांड घात हो जाएगी,
बिल्कुल। देखो कर्मों की स्थितियों को एक योग तथा एक शब्द, देखो यहाँ ग्यारहवें गुणस्थान में इतने बार योगों का पलटना हुआ, तो क्या बारहवें गुणस्थान में पूरा एक ही योग रहेगा?
नहीं,
शास्त्र में तो हमने जो पढ़ा है ना लब्धिसार वगैरह में, तो मारवे के संख्या बहुभाग तक तो वो तो पृथक वितर्क था, और संख्यात्वा भाग जब शेष रहा
अविचार,
हाँ तो उसमें ये वाला इसमें एक में स्थिर हो गया तो केवल ज्ञान हो गया। वो कितना अल्प छोटा अंतर्मूर्त होगा लेकिन तदनंतर शेष रहे क्षीण कषाय के काल प्रमाण स्थितियों को छोड़कर, यानी बारहवें गुणस्थान का जितना काल है उसको छोड़कर ऊपर की कर्मों एक मिनट ऊपरी सब स्थितियों की ऊपर के निषेकों की उदयादि गुणश्रेणी रूप से रचना करके, उदय के समय से लेकर गुणश्रेणी की रचना होती है, पुनः स्थिति कांडक घात से बिना अधस्थिति गलना द्वारा ही, यानी अभी उसके स्थिति कांडक नहीं होगा केवल नीचे से एक एक निषेक गलता है असंख्यात गुणश्रेणी क्रम से, परंतु उसमें असंख्यात गुणश्रेणी क्रम से कर्म स्कंधों का घात करता हुआ क्षीण कषाय के अंतिम समय के प्राप्त होने तक जाता है।
यहाँ पे लिखा है उदयादि क्षीण कषाय के काल प्रमाण स्थितियों को छोड़कर उपरिम सब स्थितियों की उदयादि गुणश्रेणी रूप से रचना करके, सो गुणश्रेणी रचना ऊपर हो रही है, बारवा का काल उतने प्रमाण में गुणश्रेणी की रचना नहीं हो रही है।
ये कौन से कर्मों की बात चल रही है जो भी अंतर्मुत में नष्ट होने वाले हैं? घाती कर्म जाएंगे नहीं यहाँ सब? अभी उसकी कितनी स्थिति शेष है? अंतर्मूर्त तो शेष है स्थिति, क्षीण कषाय है, परंतु यहाँ तीन घाती नष्ट हो गए ना अभी, मोहिनी तो चला गया है, तीन है ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय है। अभी उनकी तो पहले तो उन्होंने जो गुणश्रेणी की थी कब, जब आठवें की शुरुआत में, वो कैसी थी? गलितावशेष थी, उसमें घटते 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 जितनी बाकी रही थी, अब उसके अभी बारहवें का जितना काल है उसके अधिक अधिक गुणश्रेणी की थी।
अच्छा ये मैं भूल गया,
और ऊपर के स्थिति कांडक होते 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 अभी इतना होने पर अभी स्थिति कांडक रुक जाएगा, और जो ऊपर की जो सारे है वो उदय के समय से उसकी उदयादि गुणश्रेणी हो जाएगी, और यहाँ जितना काल उसका शेष है उतना एक एक समय गल कर उसका नाश होने वाला है। देखो यानी वहां पर भी असंख्यात गुणश्रेणी क्रम चल रहा है कि क्षीण कषाय के अंतिम समय के प्राप्त होने तक जाता है, और वहां क्षीण कषाय के अंतिम समय में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय इन तीन कर्मों का युगपत नाश करता है। हल में आई ना बात? अन्य कर्मों में गुणश्रेणी नहीं होती है वो बात नहीं है, तो उनकी तो स्थिति बहुत है, कितनी है तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण पड़ी, आयु यथा योग्य है। इस प्रकार इनका नाश हो जाने पर यह जीव तदनंतर समय में, बारहवें के अंत में यह कार्य हुआ, तदनंतर समय में केवल ज्ञानी केवल दर्शनी और अनंत वीर्य का धारी अरिहंत अवस्था प्राप्त हुई ना वह, तथा दान लाभ भोग और उपभोग के विघ्न से रहित होता है, ऐसा यहां समझना चाहिए। यानी ये एकत्व वितर्क अविचार वाले जो शुक्ल ध्यान है उसके बल से यह अंतिम समय में जो तीन घाती का नाश करके केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती। शंका, दोनों ही शुक्ल ध्यानों का क्या आलंबन है? समाधान, क्षमा और मार्दव आदि आलंबन है। ऊपर इस विषय में गाथा बताते 64 नंबर। अखंति मद वच्छव मुत्ति योजिन मदपहाणाओ आलंबणे हि जेहिं सुक्कज्झाणं समारोही। क्षमा मार्दव आर्जव और संतोष ये जिनमत में ध्यान के प्रधान आलंबन कहे गए हैं। जिन आलंबनों का सहारा लेकर साधु शुक्ल ध्यान पर आरोहण करते हैं, उनके ये गुण पाए जाते हैं। हम ऐसे भी उत्तम क्षमा मार्द वगैरह मुनियों के होती है, तो उसी का अवलंबन, प्रधान अवलंबन बताया है। अब दोनों प्रकार के शुक्ल ध्यानों के फल का कथन करते हैं। 28 प्रकार के मोहनी की सर्वोपशमना होने पर उसमें स्थित रखना पृथक्त वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान का फल है। क्या कहना चाहते हैं? मोहनी कर्म के यहाँ सर्वोपशमना हुई है। सर्वोपशमना क्यों कहा? ये सर्वोपशमना दर्शन मोहनी की कब होती है?
दर्शन मोहनी के तो चौथे गुण स्थान में भी होती है। सर्वोपशम दर्शन मोहनी की बात करें,
दर्शन मोहनी की सर्वोपशमना होती ही नहीं।
अच्छा, ये को देख।
अरे उसका संक्रमण चलता है उपशम काल में।
अच्छा, उपशम नहीं होता।
दर्शन मोहनी की उपशमना हुई, उपशमिक सम्यक तो हुआ, तो मिथ्या तो में से सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति रूप परिणमन चल रहा है कि नहीं है?
तो ये तो उपशम श्रेणी में भी संक्रमण तो चलता रहता है ना। उपशम श्रेणी में भी दर्शन मोहनी का संक्रमण तो होता है ना।
चारित्र मोहनी के सर्वोपशमना हो गई ना। चल में आई बात। और ये सर्वोपशमना सर्व जो करण परिणामों की उपशमना होती है, ये कर्म की उपशमना नहीं कहते, कर्णों की जो सर्व सर्व करण होते हैं उसकी उपशमना कही जाती है। फिर से देखो, 28 महीने के सर्वोपशमना होने पर उसमें स्थित रखना, यानी उपशम भाव में स्थित रखना, ये पृथक तो वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान का फल है। यानी वो 11वां गुणस्थान का अंतर्मुर चलता रहता है। परंतु वैसे तो अनंतानुबंधी को कहते हैं यहाँ पर, परंतु उसको विसंजना करके चढ़ा हुआ जीव है। परंतु मोह का सर्वोपशम करना धर्म ध्यान का फल है। क्या कहा? जो उपशम में स्थित रखना ये शुक्ल ध्यान का, कौन सा? पृथक वितर्क वाले के। परंतु वो धर्म उसका सर्वोपशम करना किसका फल है? तो धर्म ध्यान का, क्योंकि यहाँ धर्म ध्यान 11वें तक स्वीकार है। क्योंकि कषाय सहित धर्म ध्यानी के धर्म डबल डबल मन नहीं चाहिए, यह चाहिए धर्म कहो या धर्म कहो। कषाय सहित धर्म ध्यानी के सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में मोहनीय कर्म की सर्वोपशमना देखी जाती है। वहां तक तो पृथक तो वितर्क था ही नहीं, तो ये शुक्ल ध्यान के बल से उपशमना नहीं हुई है। उपशमना कहाँ तक पूरी हुई? तो 10वें के अंत में, परंतु उपशमित हुआ अभी। वो उपशमित रखना अंतर्मूर्त तक, वो उस शुक्ल ध्यान का फल बताया।
अच्छा, शुक्ल ध्यान
का उपशमना हुई, उपशमित होने का कार्य तो धर्म ध्यान के द्वारा हुआ, और वो उपशम अवस्था में कायम रखा वो शुक्ल ध्यान का फल बताया। अब कहते हैं तीन घाती कर्मों का निर्मूल विनाश करना एकत्व वितर्क अविचार ध्यान का फल है। पृथक वितर्क में तो उपशमित रखा था, और इसका फल क्या है? हाँ, तो तीन घाती कर्मों का क्षय करना। मोहिनी का तो पहले हो गया विनाश। मोहिनी का विनाश में तो वो पहले उनका धर्म ध्यान ही था, परंतु मोहिनी का विनाश करना धर्म ध्यान का फल है ना यहाँ पर। क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में उसका विनाश देखा जाता है। ये तो आसान है ना समझना, इसमें कोई बात ही नहीं है। उपशम श्रेणी में उसका उपशम धर्म ध्यान से हुआ था, और यहाँ मोहनीय का क्षय धर्म ध्यान से हुआ है। और फिर वो शुक्ल ध्यान ने कौन सा किया? वो एकत्व वितर का, तो तीन घाती का विनाश किया। शंका, मोहनीय कर्म का उपशम करना यदि धर्म ध्यान का फल है तो इसी से मोहनी का क्षय नहीं हो सकता, क्योंकि एक कारण से दो कार्यों की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। समाधान, नहीं, क्योंकि धर्म ध्यान अनेक प्रकार का है। हमने देखा चौथे से लेकर धर्म ध्यान है, और हर जगह अलग अलग कार्य हो रहे हैं, इसलिए कहते धर्म ध्यान अनेक प्रकार का है। इसलिए उससे अनेक प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति मानने में कोई विरोध नहीं आता। इन्हें इनको ये कहना है धर्म ध्यान में भी विशुद्धि के अनेक भेद होंगे कि नहीं होंगे, चौथे की विशुद्धि, पांचवे की विशुद्धि, और जहां जिस विशुद्धि से जो कार्य होना है कर्मों में भी वो स्वयं में वो वैसा हो जाता है। अभी क्या पढ़ा कल हमने, निकालो। अरे 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 अरे, क्या क्या कर रहे हैं आप? हाँ,
शुभलेशिया में बताया, इसीलिए मेरे पूछा।
हाँ हाँ, देखो
तीन
पेज नंबर 74 नीचे का पैराग्राफ,
असह्य सम्यक दृष्टिकोण होता है। तो असह्य सम्यक दृष्टि को छहलेशिया होती है,
असह्य सम्यक दृष्टि को छहलेशिया होती है, पर यहाँ तो जो ध्यान कर रहा है जीव उसकी बात यहाँ चल रही है। ध्यान के काल में की कौन सी बात होगी उसकी, और यह मनुष्यों की मुख्यता है ना। अभी वो नारकी को ऐसा ध्यान होता है कि नहीं, उसके यहाँ उसको धर्म ध्यान होता है कि नहीं, उसके कहाँ हमको मालूम है। उसको यथायोग्य शुद्धोपयोग होगा, यहाँ ध्यान की बात चल रही है। दस अभी तो पढ़ा ना, ग्यारहवें में वो पृथक वितर्क होता है। देखो यहाँ पर धर्म ध्यान जो अपेक्षा से दसवें तक स्वीकार है, कहीं कहीं किन्हीं पुस्तकों में 4, 5, 6, 7 तक ही बताया, और श्रेणी में भी वहाँ पर उपशम श्रेणी थ्रू आउट तो पृथक वितर्क बताया है, क्षपक श्रेणी में 8वें से लेकर 12वें के संख्यात बहुभाग तक बताया है, और बाद में अंतिम अंतर्मुहूर्त में वो एकत्व वितर्क अविचार हो जाता है। अब जहां जिस अपेक्षा से पूरा कथन है वहां वैसे समझना है, भी दोनों की कंपैरिजन नहीं करना। वो धर्म ध्यान अनेक प्रकार का है तो उसी को यहाँ धर्म ध्यान कहने में आता है दसवें तक। अब देखो शंका, एकत्व वितर्क अविचार ध्यान के लिए अप्रतिपाती, वो प्र बराबर लिखना, अप्रतिपाती विशेषण क्यों नहीं दिया? क्योंकि वह शुक्ल ध्यान कौन सा सूक्ष्म क्रिया के लिए अप्रतिपाती लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, ये उनका प्रश्न है। अप्रतिपाती यानी उसमें से गिरना नहीं होता, उसको अप्रतिपाती कहते हैं। और एकत्व वितर्क वाला भी केवल ज्ञान लेकर ही छूटता है, तो उसको अप्रतिपाती शब्द क्यों नहीं लगाया, उनका कहना है। समाधान, नहीं, क्योंकि उपशांत कषाय जीव के भवक्षय और काल क्षय के निमित्त से पुनः कषायों को प्राप्त होने पर, अरे पण एकत्व विचार उसको है ही नहीं ना। एकत्व वितर्क अविचार ध्यान का प्रतिपाद देखा जाता है।
उपशांत कषाय लगता है ना, शीम कषाय बताना चाहिए।
नहीं, उनको वही बताना है, पढ़ेंगे उनका शंका समाधान चलेगा। क्या कहते हैं पहले में, पहले क्या कहते हैं, जो ग्यारहवें गुणस्थान वाला है वो ग्यारहवें गुणस्थान का काल कितना है, अंतर्मूर्त, तो अंतर्मूर्त के द्वारा नियम से फिर बाद में दसवें में फिर उसके बाद नवें में आता है, वो क्या है, वो कालक्षय। और कभी किसी की आयु पूरी हो जाए, ग्यारहवें गुणस्थान में चढ़ा, तीन समय में आयु पूर्ण हुई, तो कहाँ जाएगा वो,
देव
में ही जाएगा नियम से। तो वो भवक्षय से उसका ग्यारहवा का काल यानी ग्यारहवें में से नीचे आना हुआ, तो क्योंकि उपशांत कषाय जीव के भवक्षय और काल क्षय के निमित्त से अभी वो फिर दोबारा कषायों को प्राप्त होता है। दसवें में आएंगे तो सूक्ष्म लोभ का उदय हो जाएगा, और देव में चौथे में चला जाएगा तो अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण संज्वलन सबका उदय एक साथ चालू हो जाएगा। तो पुनः कषायों के प्राप्त होने पर एकत्व वितर्क अविचार ध्यान का प्रतिपाद देखा जाता है। अब शंकाकार ने फिर शंका जो हमारे मन में आई है वही उठाई है, यदि उपशांत कषाय गुणस्थान में एकत्व वितर्क अविचार ध्यान होता है तो उवसंतोदुपदत्तम इत्यादि गाथावचन के साथ विरोध आता है, क्योंकि उपशांत कषाय में पृथक्व वितर्क होता है ऐसा बताया था पहले में पहले। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उपशांत कषाय गुणस्थान में केवल पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और क्षीण कषाय गुणस्थान के काल में सर्वत्र एकत्व वितर्क अविचार ध्यान ही होता है, ऐसा भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि वहाँ योग परावृत्ति का कथन एक समय प्रमाण अन्यथा बन नहीं सकता। योग परावृत्ति का कथन यानी कहीं एक योग से अन्य योग में गया वापस उसी योग में आना एक समय में हो सकता है, वो जिसे मनोयोग से फिर कायोग में आना होता है, वचन योग से कायोग में एक समय में आ सकता है। ऐसे कायोग से कायोग अन्यत्र एक समय में नहीं जाते, फिर भी वो बन सकता है। इससे क्षीण कषाय काल के प्रारंभ में पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान का अस्तित्व भी सिद्ध होता है, इस विषय में गाथा है। हमने पहले बताया था लब्धिसार में तो संख्यात बहुभाग तक पृथक्त्व वितर्क बताया है। अब हम ऐसा भी अभी उन्होंने क्या बताया उसको जानने के पहले हम ऐसा समझें ग्यारहवें गुणस्थान में वो पृथक्त्व वितर्क है, पलटना 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 होता है। अब जो ग्यारहवें गुणस्थान में जब पलटा, मान लेते ना कि हम कहेंगे दस दस समय तक रहता है, हम समझने के लिए है तो अंतर्मूर्त, तो वहां के अंतिम दस समय में वो जो था वही था ना, वो कहां पलटा? पूरे ग्यारहवें में हम कहेंगे पलट रहा था, परंतु किसी एक छोटे अंतर्मूर्त के लिए नहीं पलटा, ऐसा भी ले सकते हैं ना। हाँ, उसकी अपेक्षा शायद ले 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 रहे, देखो क्या कहते हैं,
ये छोटा अंतर्मूर्त तो भवन की अपेक्षा ही ले रहा है।
हाँ हाँ,
छोटा अंतर्मूर्त लेते हैं। अच्छा, अंतिम
कहीं पर भी ग्यारहवे से नीचे आना कहो या मरकर उदय में जाना कहो, अभी उन्होंने उस शब्दों में नहीं बताया है, परंतु वहाँ ग्यारहवे में भी पृथक्त्व ही होता है, ऐसा नियम नहीं है कह रहे, और उसके लिए गाथा प्रस्तुत कर रहे
हैं।
कोई भी नहीं, बारहवें के स्टार्टिंग में तो पृथक्त्व ही होता है, अंत में जाकर एकत्व होता है। अभी इसके लिए गाथा है, पहले पढ़ते देखो। जह चिर संचय मिंधन मणलो पवनु गदो धुवम दहई तह कम मिंधन ममियम खनेन झाणान लो दहई। जिस प्रकार चिरकाल से संचित हुए ईंधन को, ईंधन हुआ है वो ईंधन करो, वायु से वृद्धि को प्राप्त हुई अग्नि अतिशीघ्र जला देती है। क्या कहा? ये ईंधन क्या है? जलने योग्य पदार्थ है, और वहां अगर अग्नि लगती है और उसमें वायु बहता है जोर से, तो बहुत शीघ्र पूरे के पूरे जला देती है। उसी प्रकार अपरिमित कर्म रूपी ईंधन को, कितना है कर्म रूपी ईंधन? अपरिमित है, कहते भूभृत कहेंगे, पर्वत के पर्वत पड़े हैं। अपरिमित कर्म रूपी ईंधन को ध्यान रूपी अग्नि क्षण मात्र में जला देती, क्षण मात्र कहने से अंतर्मूर्त में जला देती है। 66 नंबर की गाथा। जह रोगाशय समणम विशोषण विरेयणो सह विहि तह कम्माशय समणम झाणान सनादि जोगेहि। जिस प्रकार विशोषण, विरेचन और औषध के विधान से, क्या कहते हैं, ये जो कुछ रोग का इलाज करने के लिए विशोषण का अर्थ होता है ये तो लंघन करना, शरीर को कृश करना, यानी कम अन्न खाना वगैरह जो कुछ है। विरेचन यानी है उसको वमनादि के द्वारा निकाल देना, या विरेचन में डायरिया वगैरह कर उत्पन्न करा के भी उसका विरेचन कर सकते हैं, और औषधि देना, इस विधान से रोगाशय का शमन होता है, यानी रोग का वो
कम
शमन होता है, रोग मिट जाता है, मिट जाता है। उसी प्रकार ध्यान और अनशन आदि निमित्त से, वहां कम्माशय कहा था, यहाँ झाणासन आदि जोगे ही, कर्माशय का भी शमन होता है। वहां रोगाशय लिया, यहाँ कर्माशय लिया। अब शुक्ल ध्यान की पहचान का निर्देश करते हैं, यानी शुक्ल ध्यान की चिन्ह बता रहे हैं। असमूह विवेक और विसर्ग अर्थात त्याग आदि शुक्ल ध्यान के लिंग है। इस विषय में गाथाएं 67 नंबर। अभया सम्मोह विवेग विसग्गात सहोन्ति लिंगायम लिंगि जय जय हिमुनि सुख झाणो वगय चित्तो। अभय असम्मोह विवेक और विसर्ग ये शुक्ल ध्यान के लिंग है, जिनके द्वारा शुक्ल ध्यान को प्राप्त हुआ चित्त वाला मुनि पहचाना जाता है।
विसर्ग,
विसर्ग का अर्थ यहाँ ऊपर, हाँ विसर्ग अर्थात त्याग बताया, बताया अभी अभी लिखा है ऊपर। असमोह तो समझते ना, भय से रहित है, मोह से रहित है, विवेक है और विसर्ग त्याग भी है। 68 नंबर। चालि जैवी है इव धीरो न परिसहो वसग्गे ही सुहुमे सुन समुच्चै भावे सुन देव मायासु। वह धीर परिसह और उपसर्गों से न तो चलायमान होता है और न डरता है। वो मुनि को धीर कहा है, वो धीर है। क्यों? क्योंकि वो परिसर और उपसर्गों से चलायमान भी नहीं होते, डरते भी नहीं है, तथा वह सूक्ष्म भावों में और देव माया में भी नहीं मुग्ध होता है। देव माया ने देव स्वयं अनेक रूप धारण करके माया से उनको चलायमान करने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो उससे मुग्ध नहीं होता, मोहित नहीं होता है, अपने ध्यान से डिगते नहीं है। वो आता है ना, रामचंद्र मुनि होकर ध्यान में बैठे थे तो सीता का जीव, वो तो देव है पुरुष, फिर भी वो माया से सीता का रूप धारण करके वहां उनको डिगने की कोशिश करते है ना। यदि सूक्ष्म भावों में और देव माया में भी नहीं मुग्ध होता है, ऊपर लिखा ना देह विचित सुहुमेशु न समुज्जयी भावेशु न देव मायासु। अब 69 नंबर। देह विचित्तम पेच्छयी अप्पाणम तह यसव्य जोंजोए देहो वहि वो सग्गम निस्संगो सौवदो कुणदी। वह देह को अपने से भिन्न अनुभव करता है, क्योंकि अपने को ज्ञान में अनुभव चल रहा है उनका। इसी प्रकार सब प्रकार के संयोगों से अपनी आत्मा को भी भिन्न अनुभव करता है तथा निस्संग हुआ, निस्संग ने निष्परिग्रही, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित, वह सब प्रकार से देह और उपधि का उत्सर्ग करता है। 70 नंबर। न कसाय समुत्थे हि बाहिज्जै मानसे हि दुखे हि ईसा विसाय सोगा दिये हि छाणो वगय चित्तो। ध्यान में अपने चित्त को लीन करने वाला वह कषायों से उत्पन्न हुए ईर्ष्या विषाद और शोक आदि मानसिक दुखों से भी नहीं बाधा जाता, यानी उसमें ये राग आदि उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं, तो कहते अपने चित्त को ध्यान में लीन हुए हैं, इनसे वो बाधा नहीं जाता, डगा नहीं जाता। 71। सियायवादी हिमि सारी रे ही बहु प्यारे हिम नो बाहि जहि साहू झेयम सुनि चलो संतो। ध्येय में निश्चल हुआ वह साधु, ध्यान में निश्चल करो, ध्येय में निश्चल, क्यों ध्येय का ही ध्यान कर रहा है उसमें निश्चल है। वह शीत व आतप आदि बहुत प्रकार की शारीरिक बाधाओं के द्वारा भी नहीं बाधा जाता है, क्योंकि वो ध्येय में इतना निश्चल है कि अन्य उसके तो उसको उस तरफ उसका उपयोग भी नहीं है, उस पर उसके बाधा नहीं होती है। ध्येय ने आत्मा अकेला नहीं, वो पूरा श्रुत का शब्द वो सब ध्येय में आ जाएगा। हाँ, वो एक पदार्थ पर उनका निश्चल ध्यान चल रहा है ना, उसको ध्येय कहा। छह द्रव्य नौ पदार्थ सबको ध्येय में गिने। इस प्रकार दूसरे शुक्ल ध्यान का कथन समाप्त हुआ। कौन सा दूसरा? एकत्व वितर्क अविचार। अब तीसरे शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। यथा क्रिया का अर्थ योग है, सूक्ष्म क्रिया है ना, तो योग को यहाँ सूक्ष्म किया जाता है और उसका निरोध किया जाता है। तो क्रिया का अर्थ योग है, वह जिसके पतनशील हो वह प्रतिपाती कहलाता है। यानी जो योग है वो तो पतन होता है ना, जो सूक्ष्म किया है वो फिर वापस लौटता है, ऐसा कहते हैं। और उसका प्रतिपक्ष अप्रतिपाती कहलाता है। जिसमें क्रिया अर्थात योग सूक्ष्म होता है वह सूक्ष्म क्रिय कहा जाता है, और सूक्ष्म क्रिय होकर जो अप्रतिपाती होता है वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान कहलाता है। सूक्ष्म क्रिया ने जिसने योग सूक्ष्म कर दिया है और वह भी अप्रतिपाती है। यहाँ केवल ज्ञान के द्वारा श्रुत ज्ञान का अभाव हो जाता है, इसलिए यह अवितर्क है। क्योंकि ये किसके होता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती? तेरहवें के अंत में हो जाता है, तो इसलिए यहाँ वितर्क है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ श्रुत नहीं है, केवल ज्ञान है। वो श्रुत वाला वितर्क वाला ध्यान तो ग्यारहवें बारहवें को बताया था, इसलिए अवितर्क है। अर्थांतर की संक्रांति का अभाव होने से अविचार है, क्योंकि अभी कोई अर्थ से अर्थ नहीं, वो तो बस अभी पूरा ही अर्थ उनके वो तो जानने में आ रहे हैं। तथा व्यंजन और योग की संक्रांति का अभाव होने से अविचार है। शंका इस ध्यान
क्या पता है?
योग की संक्रांति का अभाव।
अच्छा,
अभी योग को सूक्ष्म ही कर दिया है उन्होंने, उसका निरोध ही कर दिया है। देखो शंकाकर पूछते हैं, इस ध्यान में इनकी संक्रांति का अभाव कैसे है? क्योंकि केवली भगवान को भी मनोयोग वचन योग काय योग तीनों ही बताए हैं,
तो
उपचार से पर काय योग उपचार से नहीं है ना, वचन योग उपचार से है। तो कहते कि उसकी संक्रांति का अभाव क्यों कहते हैं? समाधान, इनके आलंबन के बिना ही युगपत त्रिकाल गोचर अशेष पदार्थों का ज्ञान होता है, इसलिए इस ध्यान में इनकी संक्रांति के अभाव का ज्ञान होता है। इस विषय में गाथा है। क्या कहना चाहते हैं? ये जो संक्रांति, वो श्रुत के शब्दों में संक्रांति होती है, अर्थ से अर्थांतर। अभी तो त्रिकाल गोचर सभी पदार्थों को एक साथ जान रहे, युगपत जान रहे, तो वहां कोई संक्रांति का सवाल ही नहीं है, ये कहना चाहते हैं। और इसमें भी जब आपको मालूम होगा, हमने लब्धि सार में भी, हमारे सपना सार में भी पढ़ा है हमने, कि जो सूक्ष्म क्रिया जाता है फिर निरोध किया जाता है, तो काय योग में रहते हुए मनोयोग को, वचन योग को और श्वासोश्वास को पहले सूक्ष्म क्रिया जाता है, फिर सूक्ष्म काय योग में रहते हुए एक एक का जो सूक्ष्म किया है उनका निरोध किया जाता है। यानी काय योग में रहते हुए ये सब हो जाता है, इसलिए ये योगों की भी संक्रांति का अभाव बताया। ये गाथा और उसका अर्थ कल ही देखेंगे अभी हम, क्योंकि वो अभी आधा ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों गाथा और उसका भावार्थ भी बताने वाले हैं। इस विषय में जो गाथा है ना, वहां से हम पढ़ेंगे कल। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हुरु। अश्विन भाई
प्रमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वर्धनम नमो लोय सबत्ता।